ओम शांति। आज का टॉपिक है सेवा केंद्र को योग केंद्र कैसे बनाएं। बाबा ने हम बच्चों को योग किसको कहते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह बताए हैं। योग अर्थात अगर हम किसी को याद करते हैं, किसी व्यक्ति को, वस्तु को या स्थान को, सीधी भाषा में कहे तो योग उसे ही कहा जाता है। बच्चे अपने माता पिता को, माता पिता अपने बच्चों को याद करते, पति पत्नी को, पत्नी पति को, टीचर स्टूडेंट को, स्टूडेंट टीचर को, बिजनेसमैन ग्राहक को, ग्राहक बिजनेसमैन को, डॉक्टर पेशेंट को, पेशेंट डॉक्टर को, वकील क्लाइंट को, क्लाइंट वकील को, भक्त अपने इष्ट को, आशिक मासुक को, मासुक आशिक को जो याद करते हैं, उनके एक दूसरे की याद को ही योग कहा जाता है। अगर हम किसी स्थान को भी याद करते हो, स्थान भी योग के रूप में ही कहा जाता है। उस स्थान के लिए उनका योग लग रहा है, जब उनको याद कर रहे कहेंगे। बात यहां पे है कि योग केंद्र कैसे बनाएं। तो दुनिया में जितने भी योग केंद्र हैं, उन सभी योग केंद्र में बाबा जो योग के बारे में बताते हैं उसके बारे में नहीं बताए हैं। योग केंद्र बहुत जगह है, लेकिन योग केंद्र सिर्फ अष्टांग योग के को ही योग केंद्र कहते हैं। अष्टांग योग जो कि शिवानंद योग केंद्र में सिखाया जाता है, आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाया जाता है, ईसा योग केंद्र में, हिमालयन योग केंद्र में, टोरंटो, कैलिफोर्निया, पतंजलि, इन सब योग केंद्र में अष्टांग योग केंद्र ही योग ही सिखाया जाता है। अष्टांग योग अर्थात उसमें आठ बातें होती है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार। यम अर्थात क्या? यम अर्थात जिसमें अहिंसा के बारे में बताते कि अहिंसक हमें बनना, हिंसा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना है, विकार में नहीं जाना है, सत्य की राहों पे चलना है और सत्य की राहों पे चलने के लिए प्रेरित करना है, और अपरिग्रह अर्थात संग्रह करने की वृत्ति नहीं होना चाहिए, त्याग की भावना होना चाहिए। माना जितना है उतना ठीक है, संग्रह करने के अपने पास इकट्ठे ये भी लाओ वो भी लाओ ऐसा नहीं, वो यम के अंदर में आता है। नियम अर्थात सत्य की राहों पर चलना और चलाना, इसमें ये भी बताते हैं, और हमारे जीवन में संतुष्टता होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए, संतोषम परम सुखम कहते ना, तो हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए। संतोष अर्थात ये नहीं कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन दूसरे के पास जो कि भी कोई वस्तु है वो वस्तु को देख के अपने को दुखी नहीं करना है कि मेरे पास रहता तो मैं भी ऐसे होता, ऐसा जीवन में त्याग तप होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए। स्व अध्याय अर्थात कुछ अध्ययन पठन पाठन होना चाहिए। ईश्वरीय परिधान अर्थात परमात्मा के, भगवान के, चाहे अपने इष्ट को पूजा करने के लिए बताते हैं उसमें। आसन, आसन में खास करके बताते कि आसन अर्थात तो कमर सीधा करके बैठना, सूर्य नमस्कार भी आसन में आते हैं जिसमें 12 पोज होते हैं, मंडूक आसन, बकरासन, वज्रासन, ये सब आसन में आते हैं। इस आसन करने से भी हमारे जो शरीर है स्वस्थ होता है, मन भी हल्का रहता है, और कई सारे तकलीफों से, बीमारियों से हम मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए इस शरीर के लिए आसन भी, शरीर और मन के लिए आसन भी बहुत अभी के समय में आवश्यक है, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग बहुत मेहनत का कार्य करते थे, लेकिन अभी सारा डिजिटल होने के कारण से जहाँ लोग पैदल जाते थे, अभी वहाँ गाड़ी से जाते, बाइक से जाते, बाइक से भी नहीं, फोर व्हीलर से जाते हैं। बाइक में धूप लगता है बोलते हैं, धूप और धूल दोनों, वो भी है और थोड़ा आलसी भी हो गए हैं। मना थोड़ा सा हमें याद है जब हम मधुबन में आए थे, दिन में 2 से 3 बार हम पैदल जाते थे ग्लोबल। अभी सोचते हैं कि जाएंगे फटाफट काम करेंगे, आएंगे ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया जहान करेंगे, लेकिन पहले भी हम बहुत सेवा करते थे। तो ये जो हालात, जो बातें मेरे साथ, वो दूसरों के साथ भी वही हुआ होगा मैं समझता हूँ। प्राणायाम में अपने श्वास के ऊपर में कंट्रोल करते, और अपने श्वास के ऊपर में कंट्रोल करके, और जिस विधि से प्राणायाम बताते हैं अगर उस विधि से करते हैं तो हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। और हम सब ने भी मिलके 1 महीना तक किए थे ना बाल उद्यान में, तो 1 महीना जो प्राणायाम किए थे, अगर उसको हम प्राणायाम अगर रेगुलर करते हैं, जैसे लोंग विलोंग, कपाल भाती, बाह्य प्रणाम, भस्त्रिका, उज्जय प्रणाम, नाड़ी शोधन, ओम की ध्वनि, ये सभी जो करते हैं अगर विधि पूर्वक करते हैं तो हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर विधि से नहीं करते तो सिद्धि तो नहीं होती लेकिन हमें नुकसान भी हो जाता है। उसके बाद में प्रत्याहार, प्रत्याहार में बताते कि इंद्रियों पर जीत कैसे पाना है, कैसे उनको अपने कंट्रोल में रखना है। तो इंद्रिय कितना होता है, 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं और 5 कर्मेंद्रियां होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय में कौन कौन से आते हैं? ज्ञानेंद्रिय में आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। और ज्ञानेंद्रिय में क्या आता है? हाथ। नहीं, कर्मेंद्रिय में आता है हाथ, पैर, मुख, मलद्वार और मूत्रद्वार। ये होता है कर्मेंद्रिय में। और 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय में बताते हैं, अगर इसमें से मलद्वार और मूत्रद्वार को छोड़ के अगर 8 को हमने अगर अपने बस में कर लिया तो ये 2 अपने आप बस में हो जाती है, मलद्वार और मूत्रद्वार। और इन्हीं 8ों को अगर अपने बस में कर लिया तो उसे अष्टजाम कहा जाता है। बिहार में और नेपाल में अष्टजाम बहुत लोग मनाते हैं, उसमें भगवान का भक्ति मना नाम, श्री कृष्ण, श्री राधे, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, ऐसे उनके नाम जपते 24 आवर कंटिन्यू, 24 आवर मोस्टली होता है, 72 घंटा भी होता होगा। तो ये अष्टजाम अर्थात वो नाम जपने वाले अष्टजाम नहीं, लेकिन 8ों इंद्रियों को अपने बस में रखना, कंट्रोल में करना, अपने ऑर्डर पर मन चलाना ही अष्टजाम है। इसमें डाइनिंग में जाते ही जो जनरल भोजन बना है वो देख के हमारे दिल थोड़ा सा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर हम हमारे इंद्रिय बस में है तो जो मिले उसमें हमें अंदर से, दिखाने की बात नहीं, अंदर से हमें संतुष्टि होगी। तो ये आता है प्रत्याहार में। ध्यान अर्थात अपने इष्ट को मेडिटेशन करना, याद करना, उनसे हुए प्राप्तियों को याद करना, उनके जीवन को याद करना, उस ध्यान में आ जाते हैं। धारणा अर्थात अपने मन को एकाग्र करना, एक में लगाना, एक संकल्प में टिकाना, ये धारणा में आती है। और समाधि अर्थात आत्मिक स्थिति में लंबे समय तक टिकना, वो समाधि के अंदर में आते हैं। तो ये आते हैं अष्टांग योग के अंदर में। ये अष्टांग योग करने से हमारे तन तंदुरुस्त होते हैं, मन हल्का रहता है, कई सारी बीमारियों से हमें मुक्त हो जाते हैं। जीवन में चिंता है, डिप्रेशन से व्यक्ति बाहर निकल जाती है, ये भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बहुत जरूरी है। लेकिन ये कब तक के लिए? सिर्फ 1 जन्म ही चलता है। इस आसन, ये जो अष्टांग योग के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, कहाँ हम कर सकते हैं अष्टांग योग? खुले स्थान में करना होता है ये। उसके बाद में अगर मौसम ठीक ना हो तो हॉल में चाहे रूम में भी कर सकते हैं। उसके लिए योग आचार्य भी चाहिए, सिखाने वाला, गाइड करने वाला। और क्या चाहिए? मैट चाहिए, शरीर तो चाहिए, मैट चाहिए। अगर बहुत बड़ी बीमारी है हमारे, अगर बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, हार्ट की तकलीफ है तो मना करते करने के लिए उनको, सिर्फ धीरे धीरे पैदल चला। अगर बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है तो पेशेंट को चलने के लिए भी मना करते हैं, चलने के लिए भी मना करते, तो नहीं कर सकते वो आप वो प्राणायाम। समय निश्चित होना चाहिए, जिस समय करते उस समय निश्चित होना चाहिए। पेट 4 घंटा कम से कम खाली होना चाहिए। पानी भी 1 घंटा आधा घंटा पहले ही हम पी सकते हैं, उसे अगर आधा 1 घंटा नहीं हुआ है तो हम नहीं कर सकते प्राणायाम। उसके बाद में बीमारी के बारे में तो हमने बता ही दिया, इसके फायदे भी हमने बताया। अब बाबा जो वो सिर्फ एक जन्म के लिए ही कर सकते हैं, अष्टांग योग से जो फायदा होता है उसकी प्राप्ति हमें एक जन्म के लिए होता है। बाबा जो योग हमें सिखाते हैं उस योग अगर हम यथार्थ रीति से करते हैं तो जिस स्थान पे हम योग करते हैं वो स्थान क्या बन जाता है, तो हमारा यादगार बन जाता है। उससे पहले क्या बनता है, तो योग का केंद्र बन जाता है। तो आज की टॉपिक है कि सेवा केंद्र को योग का केंद्र हम कैसे बनाएं। बाबा ने एक महावाक्य में बताए थे कि ये मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, ये दीवारों की महिमा नहीं परंतु मधुबन निवासी की महिमा। तो मधुबन निवासी की महिमा अर्थात क्या, मधुबन निवासी ने अपने जीवन में त्याग किया उस त्याग की महिमा, मधुबन निवासी ने तपस्या किया उस तपस्या की महिमा, मधुबन निवासी ने जो सेवा किया उस सेवा की महिमा, वही ना मधुबन निवासी की महिमा। दीवारें तो दुनिया में भी है, होटल में भी है, लेकिन ये मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासी की त्याग तपस्या सेवा योग की महिमा है। तो अगर हम अपने जीवन में त्याग तपस्या और सेवा लाते हैं तो कहीं भी अपने स्थान को, कोई भी सेवा केंद्र को हम योग केंद्र बना सकते हैं। तो उस योग केंद्र में, अष्टांग योग केंद्र में हमने क्या देखा कि हमारा पेट क्या होना चाहिए, तो खाली होना चाहिए। तो यहां पे हमारी कौन सी पेट खाली होना चाहिए, तो हमारे मन बुद्धि रूपी पेट में पर चिंतन, पर दर्शन, झूठ, कपट, छल से क्या होना चाहिए, तो खाली होना चाहिए। तभी हम ये योग कर सकते हैं और योग करने के बाद में हम अपने सेवा केंद्र को योग केंद्र बना सकते हैं। मैट कौन सा चाहिए, बगैर मैट के करते हैं तो बताते उसमें कि आपकी जो शक्ति है धरती में चली जाएंगी, इसीलिए मैट की बहुत जरूरत है। कौन सी मैट, तो सो आसन करने के लिए कुछ बिछाने वाला चाहिए। भाई साहब ले जाते थे ना आप बेडशीट, बिछाने वाला कुछ चाहिए। अगर नहीं, अगर बिछाने वाला हो तो क्या हो जाता है, जो भी हम ऊर्जा लेते हैं, शक्ति लेते हैं प्राणायाम और आसन से, वो क्या हो जाता है, तो जमीन में, धरती में चला जाता है। तो यहाँ पे हम योग करते हैं लेकिन योग से प्राप्ति नहीं होती है, चाहे हमारे सेवा केंद्र योग केंद्र नहीं बनता है। किस लिए, क्योंकि हमारे मैट आसन जो है ना, बिछाने वाले दरी ठीक नहीं है। तो कौन सी दरी लेनी पड़ेगी, तो सोमान की दरी लेनी पड़ेगी। सोमान की दरी अगर बिछा के अगर हम करते हैं क्या योग, तो ऊर्जा वहीं का वहीं रह जाती है। वो एक्सरसाइज बंद कमरे में नहीं कर सकते, खुले स्थान चाहिए। अगर खुले स्थान नहीं है तो खिड़की दरवाजा खोल के, जो कि हवा सर्कुलेट माना आने जाने वाला हो, उसी स्थान पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी खुले स्थान में हमें योग करना है, बेहद के विचार के खुले स्थान में हमें योग करना है। हद में बंद के नहीं करना है, बंद का हद वाली बंद कमरे में नहीं करना है हमें, बेहद के खुली स्थान में अगर हम योग करते हैं तो हमारे वाइब्रेशन ईंट के कण कण में जाके घुस जाता है, इसलिए हमें बेहद के खुले स्थान में योग करना है। योग कराने वाला योगाचार को भी बुलाना पड़ेगा, अगर योगाचार नहीं आए तो क्या होगा, वो भी प्रैक्टिकल जैसे लैब होता है वैसे नहीं होता, वो टीवी वाला। योगाचार हमारा कौन सा है, योगा आचार्य शिव बाबा है, योगाचार को भी रखना पड़ेगा वहां पे, कि नहीं आप रहेंगे तभी हम सीख पाएंगे और आपको रहना ही पड़ेगा। तो योगाचार भी, योगाचार्य भी चाहिए। उस प्राणायाम और आसन के लिए अगर हम टाइट कपड़ा पहने हैं तो नहीं कर सकते। अगर जबरदस्ती करते हैं तो कपड़ा फटेगी या तो हमें कहीं दर्द पकड़ेगा। तो यहां पे कौन सी टाइट कपड़ा, ढीला कपड़ा पहनना पड़ेगा, कौन सी टाइट कपड़ा को हमें हल्का करना पड़ेगा, देह भान और देह अभिमान की टाइट कपड़ा को हमें छोड़ना पड़ेगा और फरिश्ता वाली हल्का ड्रेस पहनना पड़ेगा, तभी हम योग कर सकते हैं अच्छी तरह और अपने सेवा केंद्र को योग केंद्र बना सकते हैं। हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, सर्व के प्रति, विश्व के प्रति शुद्ध पवित्र कल्याण की होनी चाहिए, हद वाली नहीं होनी चाहिए। अगर बेहद वाली रखते हैं, विश्व कल्याण के प्रति रखते हैं, तो हम बेहद की सेवा, विश्व की सेवा कर सकते हैं। हमारे सेंटर पर जो जरूरत हो वही सामान हो, योग आश्रम लगे, योग केंद्र लगे, न कि शोरूम लगे। अगर शोरूम, अगर जैसे हमारे सेंटर पे सामान हो तो क्या होगा, सामान में ही लोग आकर्षित हो जाएंगे। सामान कोई देख के उस सामान अपने घर में या अपने केंद्र में, अपने स्थान पर बनाने की तैयारी करेंगे, तपस्या की भावना उनके अंदर जागृत नहीं होगी। इसीलिए आवश्यक सामान, जो जरूरी सामान है वो रखना है। और योग केंद्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अमृत वेला भी हमें पावरफुल करना है, विशेष करना है, अलग अलग विधियों से अमृत वेला करना है। बीच बीच में हमें साक्षीपन का भी अभ्यास करना है, स्वयं को साक्षी होकर देखना है, स्वयं के पाठ को साक्षी होकर देखना है, निमित्त आत्मा जो भी है उनके पाठ को भी हमें साक्षी होकर देखना है। ऐसे नहीं कि उनके संस्कार स्वभाव के देख के हमें दुखी होना है। हमारे अंदर बाहर साफ स्वच्छ होना चाहिए, सच्चाई और सफाई होना चाहिए। अंदर एक बाहर दूसरी नहीं। अगर अंदर एक बाहर दूसरी है तो हम अपने सेवा केंद्र को योग केंद्र नहीं बना सकते हैं। जहां पे हम रहते हैं उस स्थान पे अपने बड़ों को रिगार्ड देना है, रिस्पेक्ट देना है और छोटों को सम्मान करना है, प्यार देना है, स्नेह देना है, सहयोग देना है, सहानुभूति बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि बड़ों को आगे पीछे कर रहे हैं और पीछे को अपने, ऐसे करने से फिर हमारा सेवा केंद्र योग केंद्र नहीं बनेगा। उसके बाद में योगा आचार्य की जो सूक्ष्म और स्थूल जो हमें शिक्षाएं दी हैं, श्रीमद दी हैं, मर्यादाएं दी हैं, अगर उस योगाचार्य के सूक्ष्म मर्यादाएं श्रीमद को अगर फॉलो करते हैं तो योगा आचार्य हमारे ऊपर क्या हो जाते हैं, तो खुश हो जाएगा और एक्स्ट्रा मार्क्स देने में वो मजबूर हो जाएगा। और हमारे स्थान और हम योग चलता फिरता योग केंद्र हम भी बन सकते हैं और हमारे सेवा केंद्र योग केंद्र तो बनेगा ही। अगर योगा आचार्य से कुछ शिक्षा सावधानी मिलती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा भी क्या है, तो सीख रहा है, योग सीख रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, पुरुषार्थी है, हर एक के अंदर कमी कमजोरी है, हमारे अंदर भी है। अगर योगा आचार्य से कुछ शिक्षा मिलती है, सावधानी मिलती है, तो उसे चेक करके चेंज करना है, सिद्ध और जिद नहीं करना है। अगर सिद्ध और जिद हमने किया तो हम अपने सेवा केंद्र को योग केंद्र नहीं बना सकते हैं। बाबा ने हमें विशेषता देखने के लिए चश्मा दी है, वो चश्मा पहन के रखना है और विशेषता को ही देखना है। अगर किसी के कमी कमजोरी को अगर हमने देखा तो न हम आगे बढ़ सकेंगे न दूसरों को आगे बढ़ने देंगे। अगर विशेषता को देख कर विशेष, उनकी विशेषता को अगर हम सेवा में लगाएंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे और हमारा स्थान पावरफुल वायुमंडल से उत्प्रोत रहेगा। बाबा कहते अंतर्मुखी और सदा सुखी। अगर अंतर्मुखी रहते हैं तो स्व को देख सकते हैं, कि हम कहां तक पहुंचे और हमें कहां तक पहुंचना है। तो जहां तक पहुंचना है और कितना कम है वो देख के हम आगे बढ़ने के हमें चांस मिलता है अगर अंतर्मुखी रहते हैं। तो इसीलिए हमें अंतर्मुखी भी बनना है, आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है और आत्मा को देखना है और आत्मा से ही बात करना है। हमारा सेवा केंद्र योग केंद्र बनने के लिए, बनाने के लिए एक अहम बात है कि जिस लक्ष्य से हम इस स्थान पे आए थे, हम बाबा के बने थे, उस लक्ष्य को हमें हमेशा स्मृति में रखना है। हम योगी है, तपस्वी है, ब्रह्मचारी है, इस बात को हमें नहीं भूलना है। इसीलिए योगी तपस्वी का भोजन क्या होता है, तो सात्विक होता है। योगी युक्त अवस्था में बना हुआ होता है और योग युक्त में खाया जाता है, तो हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। योग युक्त अवस्था में बना हुआ होना चाहिए और योग युक्त होके खाने वाले होना चाहिए। हमें लव और लो का बैलेंस बाबा ने सिखाया है, लव भी ज्यादा नहीं तो लो भी ज्यादा नहीं। ये क्या है, तो एक संस्था भी है तो एक परिवार भी है, तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों का बैलेंस बना के हम चलते हैं तो हमारा सेवा केंद्र सहज रूप से, सहज रीति से योग केंद्र बन सकता है। सिद्ध और जिद के पीछे नहीं जाना है हमें, एक ने कहा और दूसरों ने माना, ये संस्कार हमें धारण करना है। बालक सो मालिक, अपने पुरुषार्थ में बालक बन के और पुरुषार्थ में मालिक बन के और संगठन में क्या होना है, तो राय सुना के बालक बन के स्वीकार करना है हमें। और योग केंद्र बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमारे सेंटर पे, हमारे सेवा केंद्र पे बीच बीच में योग भट्टी का कार्यक्रम रखना है। योग भट्टी का कार्यक्रम अगर रखते हैं, योगा आचार्य से अगर शक्ति लेते हैं, तो वो शक्ति कायम रह जाती है। तो बाबा अपने स्थान को कैसे पावरफुल बनाता है वो हमने देखा है। और एक बार क्या हुआ, कोई बड़े सेंटर पे, शायद नेपाल की बात है, बड़े जज साहब आए थे कोई प्रोग्राम में, बड़े लोग थे, तो दीदी ने सभी दिखाया सेंटर में जो होता है, सब कुछ दिखाया बताया। उसके बाद में प्रोग्राम पे भाषण चला, भाषण के बाद में उनका भी चांस मिला बोलने का, तो जज साहब बोले, ये जो बहने हैं, ये बहने का कपड़ा भी सफेद है, इनका मकान भी सफेद है, तो दिल भी सफेद है, इन यहां प्राप्तियां भी अनगिनत है, लेकिन मेरा कोट भी काला है तो दिल भी काला है। और हमें दिल को सफेद करने के लिए जब भी आप बुलाएंगे और जैसे भी हमें टाइम मिलेगा हम आएंगे अवश्य, जो किसका कमाल है, बाबा का कमाल तो है ही, लेकिन वहां के भाई बहनों ने तपस्या करके, योग करके उस स्थान को योग केंद्र बनाया, उसका भी कमाल है। तो हमें बीच बीच में क्या करना है, हम कहां पे रुके हुए थे, अपने स्थान पे, अपने सेवा केंद्र पे क्या करना है, तो बीच बीच में योग भट्टी का कार्यक्रम रख के उस स्थान को पावरफुल बनाना है। सकाश की सेवा करना है, अगर सकाश की सेवा अपने सेवा केंद्र पर बैठ के करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्थान आकर्षण के स्थान बन जाता है। बेहद की भावना रख के सेवा करनी, छोटी दिल रख के नहीं रख करनी है, संकुचित विचार रख के नहीं करने, बेहद की भावना रख के हमें सेवा करनी है, समान दृष्टि रख करके करनी है, कोई छोटा कोई बड़ा कोई ऐसा कोई वैसा नहीं। अगर समान दृष्टि रख के करते हैं तो प्राप्तियां ज्यादा होती है, हमारे स्थान की वातावरण पावरफुल बनता है। अपनापन की भावना हो हर एक के प्रति और देने की भावना हो, देना अर्थात स्थूल वस्तु, देने की भावने की बात नहीं है, हमें स्थूल वस्तु की वर्तमान समय आवश्यकता नहीं है, स्थूल वस्तु वर्तमान समय हर एक के पास भरपूर है, वर्तमान समय सूक्ष्म चीजों की आवश्यकता है, सूक्ष्म शक्तियों की आवश्यकता है। अगर सूक्ष्म शक्ति हम देते हैं तो प्राप्तियां प्राप्ति है। एक बार मेडिकल विंग में शिवानी बहन से किसी ने पूछा, शिवानी बहन ने ऐसे ही बोल दिया वो लेक्चर के अंदर कि हमें देने की भावना होना चाहिए, लेने की नहीं होना चाहिए। तो बोला डॉक्टर साहब उठ के बोले, बहन जी देने की भावना होनी चाहिए, अगर हम देते ही रहे तो हम जो इतना खर्चा करके जो MD का डॉक्टर बन किया है वो कहां से हम करेंगे, हमारा हॉस्पिटल भी है, स्टाफ भी है, बच्चे भी है, घर भी चलाना पड़ता है। तो बहन जी बोली, अगर आप देने की भावना रखते हैं तो आप संभाल नहीं सकेंगे जितना आपके पास आएगा। तो सूक्ष्म स्थूल देने की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म शक्तियां देने की बात है। सेवा केंद्र पर प्रोग्राम होता ही रहता है, और प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब हम प्रोग्राम के लिए सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, उस समय से लेकर प्रोग्राम अंत होने तक अगर हम योग भट्टी रखते हैं, उससे भी क्या होता है, तो हमारा वातावरण सेवा केंद्र का पावरफुल होता है और हमारा सेवा केंद्र योग केंद्र बनता है। हमारा योगाचार्य के बहुत सारे जगह पे सेवा केंद्र खुल गया है, और बहुत सारे स्थान को क्या करना है तो उनको योग केंद्र बनाना है, इसलिए बीच बीच में चले जाता है, इसलिए उनको बार बार आह्वान करना है हमें, किसको, योगा आचार्य को। योग के भिन्न भिन्न प्रकार के विधि से हमें योग करना है, एक ही तरीका से नहीं। जिन्होंने जो कि बहन जी ने आज से हमें 10 साल 12 साल चाहे 15 साल चाहे 20 साल चाहे 8 साल 2 साल पहले सिखाया, हर रोज अलग अलग तरीका से हमें योग करना है। जिस सेवा केंद्र पर हम हैं उसी सेवा केंद्र पर क्या करना है, तो हमें एकांत में जाना है, एक के अंत में जाना है। स्थूल एकांत भी चाहिए तो सूक्ष्म एकांत भी चाहिए, उससे भी बहुत क्या होता है तो वातावरण पावरफुल बनता है। अमृत वेला से लेकर मुरली क्लास होने तक कोशिश करके, अगर कारोबार बहुत जरूरी का इमरजेंसी नहीं है तो हमें मौन में रहना है और मौन में रखने का प्रयत्न करना है। जैसे मछली के लिए पानी क्या है तो जीवन है, वैसे हम योगी के लिए योग क्या होना चाहिए तो जीवन होना चाहिए। मछली को पानी से निकाल दे तो क्या होता है, तड़पने लगता है। वैसे अगर एक दिन अगर नुमा श्याम का योग, अमृत वेला का योग, चाहे कर्म योग न हो तो हमें वैसे हमारे अंदर में तर्पण होनी चाहिए। अगर ऐसे तर्पण अगर हमारे अंदर में है तभी हम अपने सेवा केंद्र को बहुत ही जल्दी योग केंद्र में परिणत कर सकते हैं। हमारे पुरुषार्थ क्या होना चाहिए तो बहुरूपी होना चाहिए, वो तो हमने बता दिया। हमारे जीवन में सत्यता तो होना ही चाहिए, लेकिन सत्यता के साथ क्या होना चाहिए तो सभ्यता होना चाहिए, और सत्यता के साथ अगर सभ्यता है तो हम अपने सेवा केंद्र को योग केंद्र बना सकते हैं। सेवा केंद्र को योग केंद्र बनाने के लिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, लौकिकता नहीं होना चाहिए, स्थूल कारोबार की बात सेवा केंद्र पर नहीं होना चाहिए, वो कोई बिजनेस पैलेस नहीं है, योग पैलेस है। तो इसीलिए कोई अपने सेवा केंद्र पर कोई भी कारोबार की स्थूल कारोबार की बातें नहीं करनी चाहिए, जोर जोर से बोलना, आवाज, हाँ, हाथ में पैसा नहीं लेना चाहिए। योग के समय में नहीं तो या तो जिज्ञासु को भंडारी में डालने के लिए बोल सकते हैं। हम एक सेवा केंद्र पे गए थे तो हम रुके हुए थे शायद वहां पे, तो ऐसे तो होता है ना कि जब ब्राह्मण वहां से आते हैं तो कुछ तो बहन जी बोली कि भाई जी भंडारी में ही दिया जाता है यहाँ पे, हमने फिर भंडारी में डाला। तो जोर जोर से बोलना, आवाज करना, ये भी सेवा केंद्र पर अगर हम करते हैं तो हमारे सेवा केंद्र योग केंद्र नहीं बन सकता है। तो हमें जोर जोर से आवाज भी नहीं करना है, झगड़ा लड़ाई संस्कारों की टक्कर, तू बड़ा तो मैं बड़ा, ये सब नहीं होना चाहिए। सेवा केंद्र सिर्फ सेवा के पीछे ही अगर हम भागते हैं तो हमारी अवस्था भी बिगड़ती है, तो सेंटर के वातावरण भी पावरफुल नहीं रहता है। इसीलिए सेवा के पीछे ही नहीं भागना है, योग और सेवा को बैलेंस करके हमें चलना है। एक बात अच्छी नहीं है लेकिन बता देते हैं, अगर भोजन के पीछे टेस्टी मसालेदारी अगर हम खाते रहते हैं, जीवरस बन के खाते हैं, तो हम अपने स्थान को योग केंद्र नहीं बना सकते हैं। हम योगी है यह स्मृति हमें सदा याद रखते हैं तो ठीक है। योग के समय अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो ना उठना चाहिए ना ही उठाना चाहिए। अगर योग के बाद में अगर काम हो सकती है तो हम योग के बाद करें, बहुत इमरजेंसी है तो योग के समय नहीं। योग के समय नहीं, मुरली के समय दादी कहती थी, मुरली के समय दादी कहती थी ये बात। पैसे की लेन देन हमारे सेवा केंद्र पर नहीं होना चाहिए। हमारे घर की समस्याएं, परिस्थिति की चर्चा हम सेवा केंद्र पर चाहे बहन जी के पास बैठ के बार बार, वही आज ये हुआ तो कल हुआ, फलाना तो ढिंगड़ा, बहू ने ये किया तो सास ने किया, तो बेटा ने किया तो वो किया, बार बार यही नहीं करना चाहिए। इससे वातावरण क्या हो जाए तो योग युक्त नहीं रहता है। जोश और रोब में आकर के बात नहीं करना है हमें, लेने की संकुचित विचार नहीं, छोटा दिल नहीं रखना है, बाह्यमुखी होकर हमें नहीं बैठना है। अगर हम ये सब नहीं करते हैं और अपने सेवा केंद्र को अगर योग केंद्र बनाते हैं तो क्या होता है, हमारे योग आचार्य क्या हो जाएंगे, हम हमारे ऊपर खुश हो जाएंगे, हमारे सेवा केंद्र को योग केंद्र घोषित कर देंगे हमें सर्टिफिकेट हमारे सेवा केंद्र को मिल जाएगा। वो हल्के रूप से करना है, उसके पीछे नहीं पड़ना है, हल्के रूप में करना है। और अगर हल्के रूप में करते हैं, योगयुक्त अवस्था में उसका सोल्यूशन देते हैं, योगयुक्त अवस्था में अगर बहन जी को बताते हैं तो उसमें निदान भी मिलता है और बाबा मदद भी करते हैं। योग केंद्र अगर हमारे सेवा केंद्र बन जाते हैं, उससे फायदा समय की बचत होती है, व्यर्थ में हमारी समय नहीं जाती है, समय की बचत होती है, बेहद सेवा की भावना हमारे अंदर जागृत होती है, हमारे जीवन में अमूल्य परिवर्तन होता है, हमारे सेवा केंद्र में अमूल्य परिवर्तन होता है, डिजिटल माया से हमें मुक्ति मिल जाती है और जीवन जीने की युक्ति मिल जाती है और लक्ष्य हमें सामने स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये थी हमारे सेवा केंद्र को योग केंद्र बनाने से विधि और फायदे। ओम शांति।